تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 29 سے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. ہاں مگر ایکسیپشنل کیس کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتا ان ترادم منکم, مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ. یعنی تجارت کے ذریعے اگر ایک دوسرے کے مال کو کھانا ہو یا اس کے اندر دوسرا بھی راضی ہو تو اس کی اجازت ہے. ولا تقتلوا انفسکم, دوسرا حکم کیا ہے؟ کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. مراد یہ ہے کہ اپنی جان نہ لو, خودکشی سوسائڈ اس کو نہ کرو, اور دوسروں کی جان بھی نہ لو, کیونکہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے جیسے کہ ایک انسان کی اپنی جان اس پہ حرام ہے. یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ ان اللہ کان بکم رحیما, ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان. اللہ کی ذات جو ہے وہ تم پہ مہربانی کرتی ہے. پھر اس حکم کو سننے کے بعد اگر کسی نے یہ کام دوبارہ کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا تذکرہ آیت 30 میں ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور جو کوئی یہ کام زیادتی اور ظلم کے ساتھ کرے گا, تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تو ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. سوال اٹھتا ہے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں کیسے داخل کریں گے؟ تو فرما دیا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, ہے یہ کام یعنی سب کو آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے بہت آسان. یہ دو آیات ایک خاص ٹیکس میں ہیں, اور پچھلی آیات کے ساتھ اگر ہم ربط جوڑ لیں تو سورت نساء کے آغاز میں ہمیں بتایا گیا کہ تم کو ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیا گیا. من نفس واحدہ کا لفظ تھا کہ آدم علیہ السلام سے ساری دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا گیا اور سب کو اخوت کے رشتے میں جکڑ دیا گیا. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے مختلف گروہوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, جس میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق کی بات زیادہ تفصیل سے دیکھی, کچھ دوسرے رشتہ داروں کی بات وراثت کے موضوع کے اوپر بھی آ گئی. اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ایک ایسے حق کی بات کرتے ہیں جس کی عموماً کیئر نہیں کی جاتی, اور وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا. عموماً دیکھا جائے تو انسانی تعلقات میں لوگ لین دین بھی اچھا کر لیتے ہیں, خدمت بھی کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلق بھی رکھتے ہیں, لیکن جہاں کمی پائی جاتی ہے وہ لوگوں کے مال کی بات ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور بڑی محبت سے پکارتے ہیں, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو. پکار ہے, حرف ندا ہے یا, اور ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے ایمان کی نسبت سے. اگر اس کو ہم اپنے آپ کو بھی سنوائیں تو بہت ہی اچھا لگے گا. کبھی اپنے آپ کو تنہائی میں کہا کریں کہ اے ایمان والی, اس سے آپ کے دل میں ایمان کی قدر بھی آئے گی, ایمان کی محبت بھی پیدا ہوگی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ بندوں کو اس کے ساتھ پکارتا ہے. کیا کہا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. قرآن پاک میں حلال کمائی پر بہت زیادہ زور ہے, اور ایسے انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے کہ جن کی وجہ سے انسان خود بخود اپنا محاسبہ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. یہاں آپس کے مال کی بات کی گئی. پہلے اس کو اگر دیکھ لیں کہ اموالکم بینکم, اموالہم نہیں کہا, ان کے مال, کن کے؟ دوسرے مسلمانوں کے, بلکہ اموالکم کہا گیا. کیا اس سے پتہ چلا؟ ایک اخوت کے بھائی چارے کے اندر بندھی ہوئی جو قوم ہے وہ دوسرے کے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اپنے مال تو سنبھال سنبھال کے رکھو بلکہ اور دوسروں کے مال کھاتے رہو. اشارہ ہے اس میں کہ ناجائز تصرف نہ کرو, دھوکہ دہی سے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر لو, کوئی ایسا طریقہ نہ ہو کہ دوسرے کو تو پتہ بھی نہ ہو اور تم اس کا مال اپنا مال سمجھ کے کھا رہے ہو. تو اموالکم کہہ کے کم کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اخوت کی وجہ سے دوسروں کا مال بھی اس کا اپنا ہی مال کہہ کر بتایا گیا, اور ایک دوسری اس کی وجہ سمجھ آتی ہے, اور وہ کیا کہ جب کوئی کسی کا مال کھاتا ہے نا تو در حقیقت وہ اس کو تیار کر دیتا ہے کہ وہ اب اس کا مال کھائے. یعنی جب ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں نا तो कोई दूसरा भी उसी वक्त तैयार हो चुका होता है हम पर जुल्म करना। तो जो बंदा ये चाहता है कि उसके माल को कोई गलत तरीके से ना खाए, इस्तेमाल ना करे, तो उसको भी दूसरों के माल को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर लफ्ज़ बातिल इस्तेमाल हुआ, बिल बातिल। बातिल से क्या मुराद है? डिक्शनरी में अगर आप इस लफ्ज़ को देखेंगे तो हक के मुकाबले में लफ्ज़ बातिल इस्तेमाल होता है। हक क्या है? सच, राइट, हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये उसका हक बनता है। तो उसका ऑपोजिट क्या है? बातिल। तो बातिल क्या हुआ फिर? ना हक। उर्दू में कहते हैं ना, फुलां का माल ना हक ना खाओ। और इसको ना हक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो बातिल तरीके प्रैक्टिकली कौन से तरीके हैं? हर वो जरिया आमदनी जिसको शरीयत ने हराम करार दिया हो। इसकी बहुत सारी सूरतें मिलती हैं। अगर आप सही अहादीस जमा करते जाएं तो आपको तकरीबन 30 के करीब आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं कि जिसको एक दूसरे के लिए नाहक कहा गया, पूरी अहादीस आपको बयान करने की बजाय मैं सिर्फ अगर उनके नाम आपके सामने क्विकली बोल दूं कि जिसके बारे में पूरी पूरी हदीस मौजूद है कि कौन सा काम इसके अंदर शामिल होता है, ताकि फिर उससे बचना हर एक इंसान के लिए आसान भी हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ऐसी चीज़ों को लेकर दूसरी तरफ चल पड़ता है और उसकी सारी इबादत जो है वो भी ज़ाया हो जाती हैं। तो पहली चीज़ अगर आप देखें कि जिसको हदीस में बातिल कहा गया, वो हर किस्म का सूद है और इस पे हर बंदे को खूब अच्छी तरह मालूम है। दूसरी चीज़ चोरी, फिर डाका, गसब, फिर हर ऐसा माल जिसमें थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा माल आ जाए, इसको लॉटरी कहते हैं आज के दौर में, सट्टेबाजी कह सकते हैं, जुआ कह सकते हैं, और बाज़ दफ़ा बीमा और कुछ इंश्योरेंस की भी इसी किस्म की किस्में इसी में आती हैं। फिर इसी तरह किसी एक के सौदे पे सौदा करना, मसलन कोई एक शख्स कोई चीज़ ख़रीद रहा था, उसने कीमत लगाई हुई थी, ऑलमोस्ट बात पूरी होने वाली थी, और उसके बाद आपने बीच में पढ़ के फ़ौरन उसकी कीमत को तोड़ के कहा, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ तो ये मुझे दे दो, ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम इंसानी ताल्लुकात की कितनी रियायत करता है? किसी का कहीं रिश्ता चल रहा हो, लड़की की बात चल रही है, दूसरे को पता चल गई तो कहा कि जब तक वो पहली जगह अपने आपको माइंड को क्लियर ना कर ले तुम वहाँ रिश्ता ना डालो। हमारे यहाँ इसको अमूमन लेग पुलिंग कहते हैं। और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि जो बिडिंग होती है, नीलामी जिसको उर्दू में हम बोलते हैं, वो सब क्या है? सौदे पे सौदा डालने वाली बात है। तो अगर पता चल जाए कि कोई ज़मीन का एक टुकड़ा है, मिसाल है कोई प्लॉट अपना बेच रहा है, उसकी किसी के साथ डील चल रही है, एक इंटरेस्टेड है लेने में और एक देने में, अब आपको भी ये पसंद था, आप कहते हैं अच्छा ये तो बिक जाएगा, चलो मैं इससे ज़्यादा कीमत दे दूँ, ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। क्योंकि पहला शख्स उस जब दूसरे बंदे को देखेगा कि ये और ज़्यादा दे रहा है, तो वही चीज़ जो बाज़ दफ़ा 5 रुपए की होती है वो 50 रुपए की हो चुकी होती है। और आज जितना फ्लॉप आया, मैं नाम नहीं लेना चाहती आपके हमारे बहुत करीब के मुल्क में, कि जहाँ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब मारूफ कह के सब डूब गई, जो फ्लैट सब बुक किए थे वो डूब गए, जो भी उन लोगों ने टावर्स बुक कराए थे वो डूब गए, उसकी वजह यही सट्टेबाजी थी, सिर्फ अजम्पशन पे, यानी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ के बोलियां दी, और वो कहते हैं कि अभी टावर का टी बोलते थे वो लोग और पूरा टावर बुक हो चुका होता था, यानी OWDOWER बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। यानी ये वहाँ के लोगों ने गवाहियाँ दी कि सिर्फ नीचे लिफ्ट में चढ़ते थे तो ब्रोकर साथ होते थे, जिनको उम्मीद होती थी कि ये टावर बन गया तो हम इतने का बेच लेंगे, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर वहाँ मौजूद थे। कहते हैं सिर्फ नीचे से ऊपर जाने तक लिफ्ट के अंदर, उस लिफ्ट के कितने फ्लोर वो बंदा बेच चुका होता था जो उसको अनाउंस कर रहा होता था। इस तरह लगा दुनिया में कि शायद यहाँ से अब ना हमें मिला तो कहीं नहीं होगा, और जो आज एक का ले रहे हैं कल 10 का होगा, और जैसे वो चढ़ा वैसे ही गिरा। लोगों की पूरी बैंकरप्सीज हो चुकी हैं, अगर आप जानते हो दुनिया में ऐसी चीज़ों को आप देखते हैं। इस्लाम ऐसी सारी चीज़ों को बातिल करार देता है कि जिसमें चीज़ सामने मौजूद नहीं। इसी तरह एक और चीज़ जो बातिल में आती है वो क्या है? चीज़ सामने मौजूद नहीं है और उसके ऊपर सिर्फ ख्याल करके उसकी कीमत अखज़ कर देना। मसलन फल जो है दरख्त पे लगे हुए हैं अभी, या अभी फल आए ही नहीं, आम का सीज़न अभी नहीं आया, कुछ नहीं पता कितना बूर है कितना लगेगा, और कोई भी उस किसान से आके सौदा कर ले कि इस बाग इस दरख्त के ऊपर जितना भी फल लगेगा इस साल वो मैं ख़रीद लूँगा इतने का, ना उसको पता लगेगा नहीं लगेगा, कितनी आंधियाँ आ जाएंगी कितना गिरेगा। अब देखिए इसमें दो में से एक पे जुल्म होगा ना, फल बहुत ज़्यादा आ जाए और कीमत कम पे चूँकि चल चुकी लग चुकी थी, नतीजा हुआ कि उस माली पे जुल्म हो गया, और अगर दूसरी सूरत है कि कोई आफत आ गई, कोई वबा आ गई, फल इस दफा नहीं आया, हर साल आता था लेकिन इस साल नहीं आया, नतीजा क्या हुआ कि लेने वाले पे जुल्म हुआ। इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ऐसा जुल्म हो कि जिसकी वजह से वो अपने आप को गलत तरफ ले जाए। फिर इसी तरह बातिल में एक चीज जो आती है वो क्या है, ऐब छुपा देना किसी चीज का, जिसमें देने वाले को धोखा हो जाए। मसलन जानवर का दूध रोक कर उसको बेचना, ऐसे लगे कि बहुत दूध देने वाला जानवर है, बाद में पता चला कि वो बाद शुरू में तो एक आध वक्त बहुत दूध दिया, बाद में वो दूध सूखना शुरू हो गया। इसी में फिर नाप तोल की कमी बेशी भी आती है, और दूसरे को फंसाने के लिए बोली चढ़ाना। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा इंटरनेट से लोग चीज़ें खरीदते हैं तो लास्ट मोमेंट पे वो कीमत चढ़ाते हैं। अब जो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं ना, वो अपनी कीमत रोक के रखते हैं, आखिरी 2-4 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ जो अभी 10 की थी ना, तो वो ख़त्म होने से पहले 25, 30, 50 की हो चुकी होती है, क्योंकि वो फिर एकदम बिडिंग होती है। इस्लाम ऐसी अंधेर नगरी को पसंद नहीं करता, जो है वो सीधा सीधा है, खुला खुला सामने दिखे उसी को पसंद किया जाएगा। एक मौके पे अल्लाह के नबी गए और कहीं अनाज पड़ा था, तो आपने उसमें हाथ डाला तो गीला था अंदर से, तो आपने जिनका था उन्हें कहा कि तुमने इसको खोल क्यों नहीं दिया, कि ताकि जो खरीदने वाला उसको पता चल जाए कि ऊपर ऊपर तो कुछ सूखा माल है, नीचे गीला। अब इसी को ज़रा आप प्रैक्टिकल चीज़ों में लेके देखें तो हमारे यहाँ ऐसा धोखा कितना आम है। आप फ्रूट की पेटी ले लें, ऊपर ऊपर आपको बेहतरीन किस्म के आम दिखेंगे जो मोटे भी हैं और सख्त हैं, और उसके नीचे गले हुए और कमज़ोर किस्म के होंगे। यही चीज़ सेब की पेटी लेके देखें, ऊपर अच्छे होंगे नीचे छोटे होंगे। इस्लाम इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करता। आज हमारे मुल्कों में जो गुर्बत और जो अफरात ज़र है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोगों में लेने वाले को भी नहीं पता होता क्या ले रहा है और देने वाला क्या दे रहा है। इस्लाम तो इस मामले में इंसान को बहुत सीधा सादा तरीका सिखाता है। फिर इसी तरह एक वो चीज़ भी बातिल में आती है जिसकी खरीदो फरोख्त शरण हराम हो, मसलन शराब की खरीद और फरोख्त, हर वो चीज़ जो शराब खाने में इस्तेमाल होती है, यानी मुर्दार का गोश्त। फिर इसी तरह तस्वीरें बना के हाथ से जो बेचते हैं, यानी जो आप आर्टिस्ट कह लीजिए जिसमें मुजस्मे आ सकते हैं, फहाशी पर मुश्तमिल किताबें, तस्वीरें, किसी खराब कारोबार के लिए दुकान या मकान किराए पर देना, ये भी इसमें आएगा। फिर इसी तरह काहिन की कमाई, ये जो ज्योतिषी होते हैं हाथ देख कर किस्मत मालूम करने वाले, फाहिशा की कमाई यानी जिस्म फरोशी, प्रोस्टिट्यूशन जिसको बोलेंगे, और कुत्ते की कीमत, ये भी इसमें मना है। फिर इसी तरह अगली कैटेगरी इसमें जो है वो है कि हुकूमत के ज़रिए दूसरों के माल बटोरना, मसलन लेन देन के झूठे मुकदमे, रिश्वत, हुकूमत का लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना और थोड़ी सी रकम दे देना उनको खामोश करने के लिए। फिर इसी तरह अल्लाह की किताब में तहरीफ और तावील और गलत फतवों से माल बटोरना, ये हिस्सा अमूमन इल्म वालों से मुतल्लिक होता है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। और इसमें तो बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, अगर वक्त होता तो मैं आपको सारी सुनाती, यहाँ कुछ अहादीस लगवा देंगे बोर्ड पे, तो आप लोग इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। मैं जब ये सारा टॉपिक पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वो फ़ैसला कितना दुरुस्त था कि जब आपने लोगों को पाबंद कर दिया कि कोई बंदा नया कारोबार शुरू नहीं कर सकता था जबकि वो अहादीस में से किताबुल बियू ना पढ़ ले, यानी ट्रेडिंग और बिजनेस का पूरा चैप्टर है हमारे इस्लाम के अंदर, जो लोग भी डिटेल से हदीस की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें सब मौजूद है, बंद की बंद पड़ी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि लेने और देने वाले जब तक साथ हैं तो सौदे में चेंजेस हो सकती हैं, जब दोनों जुदा हो गए तो कोई उसके अंदर चेंज नहीं हो सकती। फिर एक और हदीस में आता है कि खरीदने और बेचने वाला इस हाल में जुदा हो कि दोनों राजी हों। चलें इसको औरतों के लेवल पे लिख लें, बाजार में जाती हैं, हाँ कपड़ा पसंद आ गया या कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, फिर दुकानदार ने कहा कि ये 200 की है, नहीं 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 मैं तो 50 दूंगी, उसने कहा नहीं भाई 200 की 50 नहीं, चले आप ऐसा करें कि 150 दे दें, तो बेगम साहिबा हाथ से पर्स में से 100 का नोट निकाल के झट से मार रखती और चीज़ उठा के पड़ी, बस हो गया हो गया। अगर वो तो दे के चल पड़ी 100 का नोट, लेकिन देने वाला जो ले रहा था आदमी बेच रहा था वो 100 पे राजी नहीं है, तो औरत के लिए वो सामान खरीदना जो है वो जायज़ नहीं होगा। आज ज़रा देखिए हम बाकी बड़ी बड़ी बातों को तो छोड़ ही दें, औरतें जब शॉपिंग करती हैं तो उसमें कितना बातिल तरीके से माल खाती होंगी, प्रैक्टिकली देखें। बाज़ औरतें बड़े फ़ख्र से आके कहती हैं मैंने तो इतना कम करा के लिया, अपनी इस्मत ख़राब की, इज़्ज़त ख़राब की, मर्दों के मुंह लगी, बात की, चकचक हुई और अदाएं दिखा दी, कहीं भाई भाई कह के बात कर दी, मुझे दे दो छोड़ दो, ये क्या है, क्या ये बातिल नहीं। और एक जुमला जो मारूफ आपने सुना होगा दुकानदारों के मुँह से, है तो ये इतने की लेकिन आपके लिए इतने की है, भाई मेरे लिए क्यों इतने की है, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। बाज़ औरतें इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं, तो देखिए कि हद्द उल वसा कम से कम कोशिश कीजिए बाज़ारों से खुद जाके खरीदने की, जाएं तो मर्दों के साथ जाएं। बाज़ दफ़ा जब अकेली औरतें जाती हैं और ख़ास तौर पर उसमें भी लड़कियां, और मेकअप की चीज़ें जा रही हैं और ज्वेलरी और पहन के देख रहे हैं और वो पहना रहे हैं, जूता पहन रहे हैं तो साथ हाथ लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम इसको बातिल करार देता है। और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिल जाती हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक रिवायत में आता है कि जब यहूद को अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह यहूद को गारत करे, इन पर चर्बी हराम की गई तो उन्होंने इसे पिघलाया और बेच डाला, यानी हीला साजी के ज़रिए से। बाज़ लोग कहते हैं हम शराब बेचते तो हैं लेकिन हम नॉन मुस्लिम्स को बेचते हैं, तो क्या हुआ? बाज़ कहते हैं नबी सल्लम के दौर में जब शराब हराम हुई थी तो लोगों ने कहा कि हम इसका सिरका बना लेते हैं, यानी इसको डाइल्यूट करते जाते हैं, पतला करेंगे और सिरका बनेगा। तो आपने फरमाया नहीं, जिसका कसीर हराम है उसका कलील भी हराम है। यानी जिस तरह अगर बड़े बड़े मटकों में शराब हराम है बेचना, तो इसी तरह एक चंद औंस शराब के बेचने भी हराम होंगे। फिर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, तो हुक्म दे दिया कि देखो तुम ऐसे काम ना करो कि जिससे दूसरों के और तुम्हारे दिल में आपस में दिल ख़राब होने लगें, दिल खट्टे होने लगें, और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने की बजाय नफ़रत करने लगो। हमने जब RKP में ये चैप्टर पढ़ा था तो इसको काफ़ी डिटेल से अहादीस मैंने नोट भी करवाई थी, अगर आप सुनना चाहें सारी को तो वेबसाइट से भी सुन सकते हैं, उसमें भी ये चीज़ मौजूद होगी। फिर और बहुत सारी हैं, दिल तो चाह रहा है कि मैं आपसे शेयर करूं लेकिन किसी मौके पे आगे जाके जहां सिर्फ यही मौजू होगा तो वहां आपकी इसमें मदद ज़्यादा की जाएगी। लेकिन दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे पेटों को हराम से बचा दे। हम कोई ऐसा माल, कोई ऐसा वो चीज़ जिससे दूसरों को हम यानी मुतमईन कर दें ना कर दें लेकिन ख़ुद उसको लेके बैठ जाएं, ये चीज़ सबसे दुरुस्त नहीं होगी। फिर इसी में आप देखिए कि आज के दौर में एडवर्टाइजिंग के जो बातिल तरीके हैं, औरतों के इश्तहार बड़े बड़े बना के, औरतों को नुमाइश बना के चीज़ें बेचना, कतन इसकी इजाज़त नहीं है। बड़ी बड़ी मॉडल्स को वो कपड़े पहना के आप फहाशी के इश्तहार बनाते हैं और फिर आप कहते हैं हम तो कपड़े का काम कर रहे हैं। यानी इस चैप्टर को अगर आप खोलेंगे ना तो आपको इसके अंदर से इतनी कमियां बेशियां दिखेंगी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो हैं वो भी गलत होने लगते हैं। बाज़ लोग जान के ख़वातीन को आगे रखते हैं ताकि वो आएँ और ग्राहकों से बात करें और अपनी अदाएँ दिखाएँ। कुछ कारोबार की तो डिमांड ही ये होती है कि मर्द होगा तो वहाँ काम नहीं चलेगा, औरतों को रखते हैं। बाज़ लोग पीछे मर्द रहते हैं लेकिन फैक्ट्रीज़ और जो ऑफिसेज में आगे आने वाली चीज़ें हैं वो औरतों की हैं। तो ये चीज़ तो फी ज़माना वही बात है कि फिर इसमें आप इसको जितना करते जाएँ। कोई जॉब करता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई पैसे पूरे ले ले लेकिन काम पूरा ना करे। तो अल्लाह ताला ने एक जनरल असूल दे दिया कि ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बातिल, कि आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाया करो। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सिर्फ खाना मना है, चलो उस कमाई को पहन सकते हैं और दूसरे तरीक़ों पे ले सकते हैं। तो यही बात पीछे भी गुजरी थी कि खाने का लफ्ज़ बोल के हर चीज़ मना है। क्यों? कि खाने का असर हर जगह पे आ जाता है, जिस्म के एक एक हिस्से में हम खाना जो खाते हैं उसका असर चला जाता है। तो यहाँ ये नहीं कहा कि ला ताकुलू का मतलब कि बस खाओ नहीं लेकिन पी लो, चलो पहन लो, चलो घर ले लो बातिल तरीक़ों से लोगों का घर मार के, ये असल में मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हाँ मगर इल्लान तकून तिजारतन तिजारतन अंतरादिम मिनकुम, आपस की बाहमी रजामंदी से अगर कोई तिजारत है तो इसमें अल्लाह ताला ने पूरी इजाज़त दी है, अल्लाह ताला नफ़ा दे। तिजारत में हलाल भी हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। और कमाई के ज़राए में जो पसंदीदा अमल इस्लाम में है वो तिजारत है। इस्लाम मुलाजमत को पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें बहरहाल बंदा कहीं ना कहीं आके इतना भी मजबूर बात दफ़ा हो जाता है कि लोग नमाज के लिए नहीं जाते। क्यों भाई? कि इसलिए कि जॉब में थे। तो अपने काम के अंदर एक तो ये कि किसी के बंदा अंडर नहीं होता और दूसरी बात है कि निस्बतन अपने दीन के इजहार के अंदर आज़ाद होता है। और अंतरा दिन पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम साफ़ सुथरी तिजारत की इजाज़त देता है जिसमें बिल्कुल हर बात खुली हुई है और ये कोई बुरी बात नहीं। हमारे यहाँ इसको भी बाज़ दफ़ा बुरा समझते हैं, लोग कहते हैं फ़लाँ तो बहुत कारोबारी जहन का शख्स है, फ़लाँ तो हर वक्त पैसे कमाने की सोच रहा होता है। देखिए कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ तक दूसरे का आप नुकसान नहीं कर रहे और आपका फ़ायदा हो रहा है और उसमें हलाल तरीके से हो रहा है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताजिर थे, जब आपको नबूवत मिली तो उससे पहले आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी तिजारत करते थे और बल्कि आपकी शादी की वजह जो थी वो भी तिजारत बनी। फिर इसके बाद एक रिवायत है इसके अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान की हाथ की मजदूरी और हर सच्ची खरीदो फरोख जिसमें झूठ फरेब दाखिल ना हो, ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। یعنی یہ کسبِ حلال میں سے آتی ہے. ایک روایت ترمذی میں آپ نے فرمایا کہ تاجر صدوق الامین, سچا تاجر جو امانتدار بھی ہو وہ انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور ایک اور روایت ہے, حضرت انس ہیں, ترغیب کی روایت ہے کہ سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ کمائی کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ عبادت بھی بن جاتا ہے. اب دیکھیے کتنا آسان ہے نا یہ کمائی حاصل کرنا, کہ جس میں ایک انسان دوسرے کو نقصان نہ دے, جھوٹی قسم نہ کھائے اور دھوکے بازی سے پاس ہو جائے. اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں پاکیزہ کمائی کی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے, بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں, وعدہ کریں تو خلاف نہ کریں, اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں, اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں, اور اپنا سامان فروخت کریں تو اس کی تعریفیں نہ کریں, اور جب اس کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹالے نہیں, اور جب قرض ان کے ذمے ہو تو تنگ نہ کریں. آگئی ساری باتیں اس میں. فی زمانہ یہی تو مسائل ہیں کہ اپنی چیزوں کو بڑھاتے ہیں اور دوسرے کی خراب پیش کرتے ہیں. قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گناہگاروں کی صف میں ہوں گے, بجز اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مرد حضرات اس چیز سے منسلک ہیں, ان کی کمائی میں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے نکال دیں. اور خواتین کے اس موضوع کو پڑھنے کا کیا طریقہ, آج جاتے ہی گھروں میں مردوں پہ تنقید شروع کر دیں, ہرگز نہ کریں. دیکھیے کہ دین تدریج سکھاتا ہے, اور جتنے خوبصورت طریقے سے آپ دوسروں تک دین دیں گے اتنے ہی اس کو قبول کریں گے. قرآن آپ سن رہے ہیں, پڑھ آپ رہے ہیں, اب گھر جاتے ہی آپ تنقید شروع کر دیں. ہو سکتا ہے ابھی جو لفظ جہاں بولے گئے احادیث میں سے اخذ کر کے, ان میں سے کوئی چیز کسی کے تجارت میں ہو, تو تھوڑا صبر کیجئے. کسی سے کوئی ایسی بات نہ کیا کریں کہ جو آپ کو لگے کہ وہ برداشت نہ کریں. ہم کہتے ہیں یہ تو فرض ہے, بلغ عنی ولو آیا, کہ ایک آیت بھی پہنچ جائے تو بتاؤ. تو آپ اس کے لیے کرائیٹیرین رکھ لیں, ایک معیار رکھ لیں کہ جو بات میں کہنے لگی ہوں اس سے فائدے کی امید زیادہ ہے یا نقصان کا شر زیادہ ہے. یہ ایسے جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے نا, تو آپ اسے چھری کیسے چھڑائیں گے؟ چھینیں گے اس سے؟ شور مچائیں گے؟ وہ تو اس کا ہاتھ کاٹ دے گی. کرنا کہ بچے کو کوئی آلٹرنیٹ پکڑائیں, کوئی چیز دکھائیں, چمکتا ہوا ریپر دکھائیں ٹافی کا, وہ خود ہی جو ہے وہ چھری چھوڑ دے گا. بالکل خاص طور پہ ہر وہ چیز جس کا مال سے تعلق ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہی ہے لوگوں کے لیے جیسے بچے کے لیے چمکتی ہوئی چیزیں. تو مردوں کا تو خاص طور پہ اس پہ بہت دل ہوتا ہے. تو میں آپ کو بار بار یہ نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی اپنے گھروں میں جا کے فوراً تنقید نہ شروع کر دیں, ابھی خود سیکھیں, ابھی اپنے اوپر جذب کریں, اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں, دعا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے گھر میں کوئی ایسی کمائی آتی ہے جس میں کوئی ایسا شبہ ہے تو تو اس کے اندر سے مجھے نکال دے, اور آہستہ آہستہ ہمارے لیے دوسری چیز کو لے آ. تو جب اللہ سے دعا مانگ کے پھر آپ دوسروں سے بات کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. دوسری چیز جو اس آیت میں بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس آیت کو ہم اس حصے کو ہم دو طرح سمجھیں گے. پہلا ہے یہ خودکشی کے رنگ میں, لا تقتلوا میں سوسائڈ سے منع کیا گیا. خودکشی اسلام میں حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ملتی ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ پہلی بات کہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے اور گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس طریقے سے اپنی جان لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے ہر روز مرنے کا عذاب دے گا. مثلا اگر کسی شخص نے زہر پیا تو زہر کی جو تکلیف اس کو مرتے وقت ہوئی, تو اب اس کے مرنے سے لے کے حشر تک, یعنی جو پورا برزخ کا وقت ہے, ہر وقت اس کو زہر دیا جائے گا اور وہ اس کو پیتا رہے گا. انتہائی سخت ننی سزا ہے. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو تلوار سے مارتا ہے یا اگر کوئی اور تکلیف دیتا ہے تو وہ ہر وقت اس کو اسی طرح سے مارنے کی تکلیف ہوگی, گناہ ہوگا. آپ دیکھیے اسلام تو سوسائڈ کو پسند ہی نہیں کرتا. آج کے دور میں دین کے نام پہ بعض دفعہ ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور میڈیا سے اس کو اچھالا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کیسا اسلام ہے کہ یہ خود کو مارتے ہیں یا دوسروں کو مارتے ہیں. تو آپ پہلے پورا اسلام لوگوں تک پیش کریں, پھر یہ مسئلے دوسروں کو بتائیں. پھر اگر اس کو دوسرے رنگ میں دیکھیں, لا تقتلوا انفسکم میں, کہ دوسرے لوگوں کو مارنا بھی مراد ہے, یعنی قتل عام نہ کرو. کیونکہ جب کوئی کسی کو مارے گا تو کوئی دوسرے کو مارے گا. اور انفسکم کہہ کر پھر اسی اخوت کو عام کیا جو شروع میں صورت کے تھی کہ تم سب ایک ہی نفس سے آئے ہو. مطلب یہ کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو مارو گے, قتل کرو گے, تو اس کا نقصان تم کو ہی ہوگا. تمہاری ہی ایک مومن بہن بیوہ ہو جائے گی اور تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تمہارے ہی مسلم معاشرے کے گھر کے اندر غم اور دکھ شروع ہو جائے گا، اور ان کا ایک کمانے والا چلا جائے گا، اس لیے کہ انسان ایسے کام نہ کرے۔ تو انفسکم سے کم مراد دے کے اخوت کو بھرا گیا۔ اسی طرح اس لفظ کا انفسکم کا ایک بڑا خوبصورت اور لطیف معنی بھی پیش کرتے ہیں امام بزاوی، ہیں عربی کی تفسیر ہے ان کی، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی گندی حرکتیں اور ایسے ذلیل اعمال نہ کرو کہ جو لوگوں کی نظروں میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں، کیونکہ نفس کی ذلت اور رسوائی ہی اصل میں اس کی موت ہے۔ یعنی ایک موت ہوتی ہے جان جانے سے، اور ایک موت ہوتی ہے عزت جانے سے۔ جو شخص اس طرح کے گندے کام کرے گا، خراب کام کرے گا، وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور کہا کہ دیکھو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے کہ اس نے خودکشی کو حرام قرار دیا، اس نے قتل عام کو حرام قرار دیا، اس نے دوسروں کے مال باطل طریقے سے کھانے سے تم کو روک دیا۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تم پہ۔ بظاہر دیکھیے اس آیت کے آخر میں اللہ کا رحیم ہونا سمجھ نہیں آتا، لیکن جب آپ ٹیکس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بعض دفعہ پابندیوں کا لگایا جانا ایک رحم کا تقاضا ہے۔ یہ ایسے جیسے آپ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کئی ایسے اقدامات کرتی ہیں جو ان کو بوجھ لگتے ہیں، ان کو پابندی لگتی ہے، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ کی مامتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ ادب اور اخلاق سکھانا چاہتی ہیں۔ آپ کو صبح صبح بچوں کو اٹھانا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ اگر آپ ان کو اٹھاتے ہیں تاکہ وہ پکے نمازی ہو جائیں، وہ دین سیکھنے کے لیے جا سکیں، اگر وہ عام سکولوں میں اٹھ کے صبح جا سکتے ہیں، تو اگر دین کے لیے ان کو کہیں جانا پڑتا ہے تو کیا یہ بچے کے ساتھ محبت نہیں ہے ماں کی؟ اس کو پتہ چلے گا کہ دین بھی اس قابل ہے کہ اس کے لیے صبح جلدی اٹھا جائے۔ بعض دفعہ ہم دین کو ایک ایسا چھالا بنا لیتے ہیں کہ جس سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ماں کی محبت کا بھی یہی اظہار ہے۔ پھر بھی کوئی یہ سب کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کیا یہ سارے کام جن تین کاموں کا اوپر تذکرہ ہوا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یہ دو لفظ کیوں بولے؟ کہ اس غلطی سے ہونا اور بات ہے، بھول پن سے ہو سکتے ہیں، لیکن ناحق جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ جب کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ شخص اتنا بڑا گناہگار ہے کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اس کو داخل کر دیں گے آگ میں۔ نسلی کا لفظ صلی یصلی سے ہے، تسلیہ، سوات لام یا اس کا روٹ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو جھونک دیں گے آگ میں، جیسے تنور کے اندر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اسی طرح ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ آگ میں ڈالنا اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اب ایک اور چیز جس کا تذکرہ پیچھے والی آیت کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی اہمیت کے لیے اس کو الگ آیت میں دیا، آیت 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے کبیرہ گناہوں سے جس سے منع کیا گیا، نکفرنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے اور تم کو داخل کر دیں گے عزت کی جگہ میں۔ اس آیت میں کبائر کا لفظ استعمال ہوا۔ اس پوری آیت میں آپ دیکھیں گے تو تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز ہے لفظ اجتناب سے کیا مراد ہے، ان تجتنبو، دوسری چیز کبائر سے کیا مراد ہے، کبیرہ گناہ، اور تیسری چیز اس آیت میں قابل غور ہے، نکفرنکم سیئاتکم، کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کی جائیں گی، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو آئیے ذرا تینوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے۔ لفظ اجتناب جیم نون با سے ہے، اسی سے لفظ جنابت بھی ہے۔ جنبی کہتے ہیں اس شخص کو جس پہ غسل کی حاجت ہو، اور کیوں جنبی کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ایسا شخص نماز اور قرآن سے دور رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اجتناب کا لفظ اسی سے ہے، صرف تا اس کے اندر ایکسٹرا آ گئی۔ تو اجتناب کہتے ہیں کسی ایسے کام کو جس کے اسباب موجود ہوں، یعنی کرنا بڑا آسان ہے اس کام کو، لیکن اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کیا جائے، اس کو اجتناب کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کل میں چینی سے اجتناب کر رہی ہوں، انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے اوائڈ، اوائڈ کرنا یا اس کو جان کے اپنے سے دور کر دینا۔ تو کہا کہ ایسے کام جس کا کرنا بڑا آسان ہے لیکن تم اجتناب کرو، الگ رہو، کیا پتہ چلا کہ صرف انہی گناہوں سے دور نہ رہو جو کرنے تمہیں مشکل لگتے ہیں، بلکہ وہ گناہ جو تمہارے لیے بڑے آسان ہوتے ہیں وہ بھی نہ کرو۔ آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں بڑے بڑے چند گناہوں کا تذکرہ تھا نا، مال کو باطل طریقے سے کھانا، خودکشی کرنا، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرنا، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورت طریقے سے یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تمہارے خود ہی معاف کر دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح دو طریقوں سے کی ہے، ایک ڈرا کر اور ایک رغبت دلا کر۔ ڈرا کر جو کی جائے اس کو ترہیب کہتے ہیں رہب سے، اور رغبت دلا کے جو کرے اس کو ترغیب کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا حسن ہے، کبھی لالچ دیتا ہے اچھی چیزوں کا اور کبھی خراب چیزوں سے ڈراتا ہے، کبھی جنت کی آس دلاتا ہے تو کبھی جہنم کا خوف دلا کے اللہ تعالیٰ بندوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ کبائر سے، لفظ کبائر کیا ہے؟ کبیرہ کی جمع، کبیرہ کبر سے ہے، کاف بارہ، یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے کبیرہ گناہ اور دوسرے ہیں صغیرہ گناہ۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کی کوئی لسٹ نہیں دی گئی، قرآن پاک میں کچھ بھی ایسا نہیں بتایا یا حدیث میں کوئی ایک ایسی لسٹ دی جائے کہ فلاں 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 گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے، لیکن نشانیاں بتائی گئیں۔ اس لیے کبیرہ گناہوں میں پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ گناہ جس پر حد لگے گی، حد سمجھتے ہیں نا اسلامی سزا، جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے، زنا کی سزا کوڑے لگانے کی ہے یا رجم کی ہے، تو ہر وہ گناہ جس پر حد ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جن پر حد نہیں ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ دوسری اس کی پہچان بتائی گئی کہ وہ گناہ جس پر قرآن یا حدیث میں کوئی سخت وعید آئی ہو، لعنت کے لفظ آئے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فلاں پہ لعنت کی، تو یہ کبیرہ گناہ کی علامت ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس پہ لفظ حرام بولا گیا، جیسے حرم اور ربا ہم پیچھے پڑ چکے، اللہ نے ربا کو سود کو حرام قرار دیا، تو حرام کا لفظ آیا جائے گا اس کو بھی کبیرہ کہیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری ہی باتیں ٹھیک ہیں، ہر گناہ جو ہوتا ہے نا وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ شروع میں گناہ چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونے لگتا ہے، اور جب ایک گناہ کے اوپر تکرار کی جائے، اس کو ریوائز کیا جائے، تو وہ گناہ خود بہت بڑا بن جاتا ہے۔ کسی کی بات بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے کہا، کسی نے ان سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے اور صغیرہ کون سا ہے، تو یاد رکھنے کے قابل انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا ہر گناہ ہی کبیرہ ہے، کیونکہ وہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا مجھے فریج میں سے پانی دینا، چھوٹی سی بات ہے نا، تو بچہ کہ ممی نے کہی یہ چھوٹی سی بات ہے، نہیں کرتا، چھوٹی سی بات ہے نا، میں نہیں مانتا، بیٹا وہاں سے پلو دینا، تکیا دینا۔ آپ کا بچہ وہاں بیٹھا رہے، ممی کو بڑا بات بڑی بات کہتی تو میں مانتا، اب یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں مانوں نہ مانوں میری مرضی، کیسا لگے گا آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو تکیا تو بھول جائے، پانی تو بھول جائے، آپ کے سر سے پاؤں میں آگ لگ جائے گی کہ یہ اس کو اتنی ضرورت ہو گئی کہ میں اس کو چھوٹے سے کام کہہ رہی ہوں تو نہیں کر رہا، تو بڑا کہاں کرے گا۔ تو جب ہم اپنے اولادوں یا اپنے ماتحتوں کے چھوٹے سے کام پہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹا کام ہے یا بڑا ہے؟ ٹھیک ہے اس کی انٹینسٹی ہے، یہ ایسے جیسے کوئی بک ہوتی ہے نا لاء کی، مثال ہے آپ ٹریفک رولز کو فالو کریں، کچھ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ پہ آپ کو صرف الرٹ کیا جاتا ہے، کچھ پہ ٹکٹ مل جاتا ہے، کچھ پہ جا کے چالان بھرنا پڑتا ہے، کچھ میں جا کے پھر بالآخر جیل میں بھی رہنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایسے سارے کام کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے یا قرآن کے آیتوں کے ذریعے غلط کہہ دیا گیا، وہ چیز درست نہیں ہے۔ پھر اس کی پوری لسٹ ہے، امام زہبی ہیں، الکبائر کے نام پہ ان کی ایک بک ہے، اس کے اندر انہوں نے پوری لسٹ بتائی ہے، الزواجر، اور ہم نے رب کا پیغام میرے نام کلاس میں اس پوری لسٹ کو بھی ریوائز کیا تھا، کبھی موقع ملا تو آپ اس کو سن سکتے ہیں بعد میں۔ ابھی صرف اتنا ہی سمجھ جائیں کہ کبائر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے اجتناب کرو، یا اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں بلکہ کہا کہ اس سے بچ جاؤ۔ ما تن ہو نان ہو، جس سے تم کو روکا گیا، نہا سے ہے نون ہا یا، نہیں انل منکر میں ہم یہ لفظ پڑھ چکے کہ جس سے تم کو روکا گیا وہ کام مت کرو۔ آپ اپنے بچوں کو بھی یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو جس سے منع کیا رک جاؤ۔ اگر آپ کا بچہ آگے سے سوال پوچھے، کیوں، وجہ، حکمت، میں ہی کیوں نہیں، میں ہی کیوں، اس سے کیا ہوگا، آپ کو غصہ آئے گا نا۔ بس آپ بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو بجلی کی تار کھلی ہوئی، اس کے پاس نہ جانا، آپ پسند کیا کرتے ہیں کہ بچہ کہ ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ سوال کرے کیا ہوگا، اچھا میں پلاسٹک کے جوتے پہن لوں گا، اچھا کیا میں گلوز پہن کے اس کو پکڑ لوں، तो गुस्सा आएगा ना। तो जो लोग हिम्मत में भर चुके होते हैं ना, वो अल्लाह सुबहाना ताला के हराम करदा कामों को भी करके आगे से पूछते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा और इससे नुकसान क्या होगा और किस तरह से होगा। बहरहाल कबायर की एक लिस्ट जो है एक सही हदीस के अंदर आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात मुहलिक चीज़ों से बचो, हलाक करने वाली सात चीज़ों से बचो, जिसके अंदर अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करार देना, यानी शिर्क किसी सेंस में भी। अब आप कहें कि फ़लाँ दुआएं कबूल करते हैं, फ़लाँ बाबा जी बेटे देते हैं, या फ़लाँ की दुआ ज़रूर कबूल होती है, ये सारी अल्लाह की सिफ़ात का शिर्क है। तो शिर्क की जो बारीकियाँ ये कबायर हैं। इसी तरह जादू करना, नाहक किसी को कत्ल कर देना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद के वक्त मैदान से भाग जाना, क्यों? इसलिए कि आपने अपनी जान बचाई लेकिन इस्लाम को ख़तरे में डाल दिया। और इसी तरह पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना, ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, तो इससे अल्लाह के नबी ने मना किया। इसी तरह एक और रिवायत है मुसनद अहमद की और नसाई की, कुछ लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, आदि शराबी यानी जो शराब का आदि है, वालदैन का नाफरमान और रिश्तेदारों से कतअ ताल्लुकी करने वाला, और दयूस। पूछा अल्लाह के नबी, दयूस कौन है? फरमाया, जो अपनी बीवी के बारे में यानी अपने घर वालों में कोई खराबी देखता है लेकिन खामोश रहता है। अब उसको आप आर्ट के नाम पे, फ़न के नाम पे, कल्चर के नाम पे ले लें या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लें, कोई भी वजह हो सकती है। और इसी तरह जिन्नों से गैब का हाल जानने वाला। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर किस्म के कबायर और सगायर से महफूज रखे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला के अजाब में उससे बच सके। तीसरी जो बड़ी अहम बात है इस आयत की, वो क्या है कि नुकफ्फिरनकुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारी सय्यात तुमसे दूर कर देंगे। इसको कहते हैं तकफीर सय्यात। ये कैसे होता है कि अल्लाह ताला कैसे उस बंदे की बुराइयों को उससे दूर कर देते हैं? अगर आप लफ्ज़ नुकफ़िर को देखेंगे ना, तो इसमें लफ्ज़ काफ़रा छुपा हुआ है, काफ़ारा, हाँ, ये वही लफ्ज़ है जो काफिर के अंदर आता है। इसका मानी होता है मिटा देना, नहव नमहू, जैसे हमने पढ़ा ना पीछे भी, और नगफिर कहते हैं बख्श देने को। इसके ऊपर बारे में एक कोटेशन है कि जब इंसान गुनाह का इर्तिकाब करता है तो इससे इसकी पाकीज़ा और मासूम फितरत मुतासिर होती है, और आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से इसकी नफ़रत उनसे उन्स में तब्दील हो जाती है। लेकिन जब कोई शख्स बड़े बड़े गुनाहों से बचने का पक्का इरादा कर लेता है, तो सारी आसानियों और इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद वो अपना दामन बचाने की कोशिश करता है, तो इस कश्मकश से इसके दिल के आईने से जंग दूर होने लगता है, तबीयत फिर अपनी खोई हुई सेहत वापस ले आती है, वापस ले लेती है, और गुनाहों से फिर इसको नफरत होने लगती है। इसी हालत को तकफीर सय्यात कहते हैं। बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, ये इमाम गजाली ने अपनी किताब हुज्जतुल इस्लाम में नकल की। अपने लफ्ज़ों में इसका ख़ुलासा क्या होगा कि बंदा जब नेक बनने की कोशिश करता है ना कि बस ख़त्म, आज तक हो चुका, अब आगे से मुझे अपने आप को बचाना है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गुनाहों से नफरत होती है। आप में से बहुत सारे लोग इसकी तस्दीक करेंगे कि जब से कुरान की क्लासेस में आना शुरू किया, कोई आपको नहीं कहता, लेकिन चुपके चुपके आप अपनी अलमारियों को भी सेट कर रहे हैं, आप अपने घर को भी सेट कर रहे हैं, आप अपनी ज़ुबान का भी हिसाब ले रहे हैं, आप अपनी आंखों पे भी चेक लगा रहे हैं। ये है असल में वो फ़ुरक़ान जो कुरान पढ़ने से मिलता है कि इंसान से बुराइयाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। एक सूरत ये है, तो नुकफ़िरनकुम सय्यातिकुम की पहली सूरत क्या है कि फितरी तौर पर गुनाहों से नफ़रत हो जाती है। कल जो चीज़ें आपको नाफरमानी के कामों में मज़ा देती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको उससे नेकी के कामों में मज़ा है। मिसाल दूंगी कि कल आपको गाना सुन के लज्जत मिलती थी, अब आपको अच्छी आवाज़ में तिलावत सुन के खुशी होती है। कल गॉसिप और बैठ के घंटों ऐसे ही इधर उधर की कीलो कॉल और बातें और गीबतें करना अच्छा लगता था, अब आपको दर्स कलाम, दर्स की महफिल में बैठना अच्छा लगता है। पहले आप तीन तीन घंटे मूवी देखने के लिए बैठते थे, अब आप तीन तीन घंटे तफसीर की क्लास में बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि आपके गुनाहों की तकफीर हो रही है। अल्लाह ताला आपकी सोच, आपकी चॉइस को बदल रहा है। इसको आसानी से समझने के लिए अगर आप ये लिख लेना कि नुकफ़िरनकुम सय्यातिकुम, क्या कि बंदे की चॉइस बदलने लगती है, उसकी चॉइस अल्लाह की चॉइस से मिलने लगती है। कभी आपने दुनिया में किसी को देखा है, दो दोस्त हैं, दो बहनें, वो क्या कहती हैं, आपसे मेरी बड़ी चॉइस मिलती है। मसलन अगर आप बाहर के मुल्क रहती हैं और आपको कपड़े बनाने हैं, तो अमूमन आप किसको देती हैं? जिसकी चॉइस आपसे मिलती हो। आप कहते फुला मेरी शॉपिंग करे क्योंकि उसकी चॉइस मेरे से बड़ी मिलती है। कभी किसी को आप सेम वही कपड़ा पहने देख लें जो आपने पहने, तो आप कहते देखा मेरी चॉइस तुमसे मिल गई, खुशी होती है ना। इसी तरह शौहर कोई चीज़ लेके आए बड़ी मोहब्बत से और अब आपकी चॉइस ही नहीं मिलती, तो आप कहेंगे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। वैसे कह आप ये रहे होते हैं ना कि ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर ये होता है कि आपको पसंद नहीं आया। और अगर आपको शौहर की लाई हुई चीज़ पसंद आके तो जाए, फिर आप देखे कहेंगे बिल्कुल मुझे इसी की ज़रूरत थी। फितरी बात है, कोई आपको महंगी से महंगी चीज़ दे दे, आपको पसंद ना आए ना तो बोझ लगता है क्या करूंगी अब इसका। और कोई सस्ती से सस्ती चीज़ दे दे और आपकी चॉइस की हो ना, तो आपको खुशी होती है, चॉइस और ज़रूरत दोनों की। अब आप सोचिए कि नुकफ़िरन्कुम सय्यातिकुम, क्या है एक खाकी, एक ज़मीन के ज़र्रे इंसान की चॉइस अर्शों के मालिक से मिल जाए। हम अपनी चॉइस को अल्लाह की चॉइस से मिला लें, क्या आज से हम एक दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह मेरी चॉइस तेरी चॉइस के मुताबिक हो जा, जो तुझे पसंद वो मुझे पसंद हो जाए, जो तुझे नहीं पसंद वो मुझे भी ना पसंद रहे। अरे अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे, आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसी बन जाऊं कि कल जब क़यामत के दिन मैं तेरे पास आऊं तो तू मुझसे राजी हो जाए। ये है नुकफ़िरन्कुम सय्यातिकुम की पहली सूरत। दूसरी सूरत क्या है जिसकी हदीस से आपको दलील मिल जाती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एक बंदा वुजू करता है तो वुजू के पानी के साथ उसके गुनाह धुलने लगते हैं। कुली करते हैं तो मुंह के गुनाह, मुंह धोते हैं तो मुंह के गुनाह, जुबान के गुनाह, हाथों के गुनाह, सारे गुनाह धुल जाते हैं। हत्ता के जब वो मस्जिद की तरफ जाता है तो हर कदम पर गुनाहों का कफारा होता है। तो ये दूसरी सूरत है कि जितनी नेकियां करते जाएंगे ना तो गुनाह माफ होते जाएंगे। ये ऐसी है जैसे कैसेट आपने देखी होगी, टेप होती है ना, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड हुआ हुआ। कभी आपने देखा कि गलती से आपसे रिकॉर्डिंग का बटन दब जाए तो क्या होता है, उसी के ऊपर कुछ और रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, पिछली फाइल के ऊपर दूसरी फाइल आ जाती है, पहली डिलीट हो रही है, दूसरी उसके ऊपर आती जा रही है। ये भी एक तकवीर है। हम चलते फिरते अपने गुनाहों को करते रहते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला नेकियों के मौके लाता है। इसकी दलील अल्लाह के नबी की वो रिवायत भी है कि आपने फरमाया कि किसी के घर के दरवाजे पे पानी की नहर हो और उसमें वो 5 दफ़ा गुसल करे तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल रहेगा? कहा नहीं रहेगा। तो कहा यही मिसाल 5 नमाज़ों की है कि जो बंदा 5 दफ़ा वजू करके अच्छे तरीके से नमाज अदा कर लेता है तो अल्लाह सुबहाना ताला उसके जिस्म पे गुनाहों का मैल ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए फरमाया एक नमाज से दूसरी नमाज अल कफ़ारतु लिमा बैनहुमा, फजर की नमाज पढ़ी फिर जोहर पढ़ते हैं, इसके बीच में जो आपसे छोटी छोटी गलतियाँ खताएँ गुनाह होते हैं हमें पता ही नहीं चलता, नुकफ़िरन्कुम सय्यातिकुम। जोहर की नमाज़ पढ़ी फिर कुछ काम हो गया असर के तक, अल्लाह कहते हैं मैं खुद ही माफ़ कर देता हूँ। इस तरह से बंदे के हिसाब को अल्लाह साफ़ करते रहते हैं। एक क्लीनिंग तो हम करते हैं ना अपने घरों की, अपनी अलमारियों की, लेकिन एक क्लीनिंग अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए कर देती है नेकियों की सूरत में, हमें गुनाहों से पाक कर करके। फिर इसी तरह आप देखिए कि नुकफ़िरन्कुम सय्यातिकुम में एक और भी चीज़ आती है, और वो क्या है कि ऐसा बंदा जो कल तक गलत काम करता था और उसकी शोहरत हो चुकी थी, लोग उसको गलत काम के लिए बुलाते थे, आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी शोहरत अच्छे कामों की होगी ना तो लोग उसको अच्छे कामों के लिए बुलाएंगे। बस आप देखिए कि एक वक्त लोग सिर्फ आपको शायद इसलिए बुलाते होंगे कि ज़रा आना, ज़रा थोड़ी सी रौनक होगी, ज़रा गाएंगे, डांस होगा, लुड्डी डालेंगे, मिसाल दे रही हूँ। हालांकि ये लफ्ज़ भी बोलने में मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे लेकिन मिसाल दे रही हूँ। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रही हैं, आपकी किरत अच्छी हो रही है, आपको हदीसें याद हो रही हैं, तो कभी आप कहीं बैठेंगे ना तो लोग कहेंगे अच्छा चलो कोई हदीस सुनाओ, अच्छा क्या पढ़ा आज, क्या पढ़ा? क्या आप लोगों से पूछते हैं लोग घर जब आप जाते हैं आपके घर वाले कि आज क्या पढ़ा? हाँ, तो ये क्या है, ये नुकफ़िरन्कुम सय्यातिकुम है। कभी लोग आपसे पूछते थे अच्छा सुनाओ क्या देखा, अच्छा रात फिल्म में क्या था, अच्छा वहाँ गई सिनेमा में कैसा रहा, तो क्या ये तकफीर नहीं हो रही? क्या आप अपने आप को रोज़ पाक नहीं महसूस कर रहे? और इसे आप देखिए कि अंदर के बोझ कितने धुलेंगे, आपका डिप्रेशन जो है ना ये पीस ऑफ माइंड में बदल जाएगा। अल्लाह ताला इतने गैर महसूस तरीके से क्लीनिंग करते हैं इंसान की कि उसको पता ही नहीं चलता, और जो गुनाहों का बोझ ले ले के हम फिर रहे होते हैं ना वो रिलैक्सेशन में बदल जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर एक बंदा अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस करता है। और आपको पता है कि 700 तक गुनाहों के लिए सहाबा किराम ने बनाई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो के सामने किसी ने कहा कि कबीरा गुनाह तो 7 हैं, तो आपने फरमाया 7 नहीं बल्कि 700 कहा जाए तो मुनासिब मालूम होता है। यानी हम तो छोटी छोटी बातों को कह देते हैं ना कुछ नहीं होता, ये नहीं वो नहीं होता, एक बड़ी खूबसूरत बात है, कहते हैं कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की मिसाल महसूसात में ऐसी है, यानी महसूस करने में, जैसे छोटा बिच्छू और बड़ा बिच्छू, कोई फ़र्क है? यानी किसी को कोई छोटा बिच्छू काटे या बड़ा बिच्छू काटे, काटने वाले को दर्द में कोई कमी होगी? एक ही जितनी होगी ना। इसी तरह आग के बड़े अंगारे हाथ में ले ले या छोटी अंगारी ले ले, बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बंदा जिस तरह एक छोटे से बिच्छू के डंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोटी सी चिंगारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या कल वो अल्लाह की जलाई हुई आग को बर्दाश्त करेगा? कोई ये कह देगा, अच्छा अल्लाह बड़े गुनाह नहीं करता, छोटे करता हूँ, तो तू जहन्नुम के बड़े बड़े शोलों की बजाय छोटी छोटी चिंगारियाँ मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। इसी तरह मोहम्मद बिन काब कुर्तुबी कहते हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत ये है कि गुनाहों को तर्क किया जाए। लिखिए इसको, कितने लोग हैं जो इबादत की ये डेफिनेशन जानते हैं? हमारे यहाँ तो इबादत क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ी इबादत क्या है? कि गुनाहों को तर्क किया जाए। जो लोग नमाज तस्बीह के साथ गुनाहों को नहीं छोड़ते, इनकी इबादत कबूल नहीं होती। है ना जुल्म, करते रहे इबादत और कबूल ही नहीं हुई। इसी तरह फुज़ैल बिन अय्यास कहते हैं, तुम जिस कदर किसी गुनाह को हल्का समझोगे, उतना ही वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुर्म होगा। इसको भी हाईलाइट करके लिखिएगा, मैं दोबारा बोल देती हूँ। तुम जिस कदर किसी गुनाह को हल्का समझोगे, उतना ही वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुर्म हो जाएगा। और इसी तरह असलाफ में से किसी ने कहा कि हर गुनाह कुफर का कासिद है। कासिद कहते हैं एम्बेसडर को, यानी हर गुनाह कुफर को बुला रहा होता है, जो इंसान को काफिराना अमल और अखलाक की तरफ दावत देता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आज देखिए गुनाहों को कितना हल्का समझ लेते हैं ना, तो गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता, ये देखिए कि उस गुनाह की सज़ा कितनी बड़ी है। इसी तरह मुसनद अहमद की एक रिवायत है हज़रत आयशा से, कहती हैं कि हज़रत मुआविया को एक ख़त में लिखा कि बंदा जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो इसके मद्दाह भी मजम्मत करने लगते हैं और दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। गुनाहों से बेपरवाही इंसान के लिए हमेशा की तबाही का सबब है। मैं दोहराऊं इसको अपने लफ्ज़ों में, हम जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं ना, तो हमारे दोस्त भी हमारी बुराई करने लग जाते हैं और हमारे दुश्मन तो शौक से ही करेंगे। ज़रा सोचिए कहाँ रास्ता खुलता है फिर गुनाहों के करने का। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर तौबा और इस्तग़फ़ार कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है, और अगर तौबा ना की तो ये नुक्ता बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि इसके पूरे दिल पर छा जाता है। यही वो बात है जिसको सूरत मुतफ़िफ़ीन में रईन कहा गया, कल्ला बल रान अला मा कुलूबिहिम, अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला कहते हैं इनके दिलों पर जंग लग चुका। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन सारी चीज़ों से महफूज रखे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी तक पहुंचा दे, और हम वो गलत काम करके अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से को ना पुकारें। फिर इसी तरह माँ बाप को गाली देना, ये भी कबीरा गुनाह में है। मेराज के हिस्से में कमी करके देना, ये कबायर में से है। फिर इसी तरह एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन दफ़ा आपने ये बात फरमाई, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हज़रत अबू ज़र ने पूछा कि अल्लाह के नबी कौन, ये कौन है जो तबाह हो बर्बाद हो गए? तो आपने फरमाया, वो शख्स जो तकब्बुर के साथ पजामा या तहबंद या कुर्ता या अबा को टखनों से नीचे लटकाता है, और वो शख्स जो अल्लाह की राह में कुछ खर्च करके फिर एहसान जतलाए, और तीसरे वो आदमी जो बूढ़ा होने के बावजूद बदकारी में मुबतला हो, चौथा वो जो बादशाह या अफसर होने के बावजूद झूठ बोले, और पांचवा जो अयालदार होने के बावजूद तकब्बुर करे, और छठा वो जो किसी इमाम के हाथ पर महज दुनिया की खातर बैत करे। तो अल्लाह ताला महफूज रखे। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एहतसाब के लिए अगर इंसान आज सिर्फ इतना ही समझे कि मुझे अपने आप को अल्लाह की नज़रों में रुसवा नहीं करना, और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि वो मेरी इस्लाह फरमा दे। कहा वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, फिर हम तुम्हें इज़्ज़त की जगह में दाखिल करेंगे। ये बड़ी प्यारी बात है, पहले गुनाह माफ़ होंगे, यानी जहन्नुम से रोकेगा अल्लाह, जहन्नुम में नहीं भेजेगा। लेकिन अब मुदखलन करीमा क्या है, इसके फिर दो मानी है, दुनिया में उसकी इज्जत हो जाएगी करामत से, करम से, और दूसरा मानी क्या है कि मुदखलन करीमा से मुराद यहाँ जन्नत है, कि ये गुनाह जो उसके जन्नत में जाने के रास्ते में रुकावट बने हुए थे, अल्लाह ताला उन सारे गुनाहों से उसको पाक करके फिर जन्नत में जाने के काबिल कर देगा। तिलावत सुनते हैं यहाँ तक।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما